नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार।
मित्र प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों भजन संहिता से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने दाऊद के उन अनुभवों से सीखा कि किस प्रकार परमेश्वर उसके साथ था। आज हम अपने अध्ययन को भजन संहिता 5 से अध्याय 7 तक देखेंगे। आज का विषय है सुबह की प्रार्थना, महासंकट में ईश्वर भक्त की पुकार। आइए हम आगे बढ़ें और अपने अध्ययन को आरंभ करें। भजन 5 उस भाग का अंश है जो मसीह से संबंधित दो भजनों के मध्य सेतु का काम करता है। संख्या 4 से 7 के भजनों का समूह वास्तव में एक कहानी सुनाता है। पहले तो ये भजन राजा दाऊद के व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हैं। दूसरा, ये भजन महाक्लेश के समय इसराइल राष्ट्र की भविष्यवाणी सुनाते हैं और आज हमारे लिए भी सिद्धांतों से पूर्ण होने के कारण वे अत्यधिक प्रासंगिक हैं। उनमें परमेश्वर के भक्तों के लिए हर समय हर युग में संदेश निहित है। यह भजन दाऊद द्वारा लिखा गया है और जैसी इसकी प्रस्तावना है, प्रधान बजाने वाले के लिए बांसुरियों के साथ दाऊद का भजन। भजन 4 तार वाले बाजे पर बजाया जाता था और यह भजन बांसुरी पर बजाया जाता है। दाऊद इसराइल के मधुर भजनकार ने अधिकांश भजनों को संगीत से संवारा था। अति संभव है कि बांसुरियों के साथ भजन मंडली की इस भजन को गाती थी। इस भजन की शैली और राग को आर्थर प्रीधाम ने अति सुंदर रूप से व्यक्त किया था। यह विश्वास की एक प्रार्थना है जो एक ऐसे मन से चढ़ाई गई है जिसमें परमेश्वर के खोजियों की समझ विहित है, जो उसे खोजने वालों के लिए ढाल और प्रतिफल देने वाला तो मानते हैं, साथ ही यह भी मानते हैं कि विश्वासी की आशा में दैनिक बुराई और अभक्ति की अपनी भूमिका है। अतः इसकी सामान्य अभिव्यक्ति में अधर्म की अधिकता के कारण आत्मा की झुंझलाहट भी है। प्रीधाम ने एक रोचक बात और भी कही है, अतः महाक्लेश में धीरज का विकास होता है, मुक्ति की निश्चय आशा में आनंद की बहुतायत होती है, जो अचूक प्रेम की सुमति के कारण किसी की बात भी मान लेता है। इस वैभवशाली भजन का सार इस प्रकार है। इस भजन को प्रातःकालीन भक्ति का गीत भी कहते हैं। देखिए इसका आरंभ कैसे होता है। भजन संहिता 5 उसके 1-3 में हम पढ़ते हैं, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मेरे प्रियो, मैं इसी बात को भिन्न रूप से प्रस्तुत करता हूँ, मेरी आवाज पर कान लगा, हे यहोवा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, मेरे रोने को सुन, हे राजा मेरे प्रभु, क्योंकि मैं तुझ ही से विनती करता हूँ। हे यहोवा, तू प्रातःकाल मेरी वाणी सुनेगा, मैं भोर को तुझे पुकारूंगा और बड़ी आशा से तेरी ओर अपनी आंखें उठाऊंगा। यह भजन प्रातःकालीन प्रार्थना है। सुबह सुबह उसकी वाणी परमेश्वर को पुकारती है। प्रातःकाल परमेश्वर से प्रार्थना में मन लगाने का अति उत्तम समय होता है। भजन 5 उसके 4-7 में लिखा है, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नाश करेगा, यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मेरे विचार में इन पदों को समझने के लिए यह अनुवाद अधिक अच्छा होगा, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जिसे दुष्ट प्रसन्न करे, दुष्ट का तेरे साथ निवास नहीं है, हठी मनुष्य तेरी दृष्टि में खड़े होने योग्य नहीं है, तू अधर्म के सब कामों से घृणा करता है, वे जो झूठ बोलते हैं तू उन्हें नष्ट कर देगा, लहू बहाने वालों से और धोखा करने वालों से यहोवा घृणा करता है, मैं तो तेरी महान दया के कारण तेरे भवन में प्रवेश करने पाऊंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर के दर्शन पाकर भय के कारण मुंह के बल गिर पड़ता हूँ। मेरे प्रियो, यह भक्त जन के लिए सांत्वना का कारण है। आज आप अपने चारों ओर दृष्टि डालते हैं तो मेरी तरह इस दुष्ट संसार को और उसके अधर्म की अधिकता के कारण हताश हो जाते हैं, आपका मन दुखी हो जाता है। ऐसे समय में एक ईश्वर भक्त मनुष्य के लिए क्या आशा है। भजनकार हमसे कहता है, दुष्टता के प्रति उसके मन की घृणा से प्रकट होता है कि वह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर भी संसार की इस दुष्टता से घृणा करता है। वह आज के दुष्ट संसार को देख रहा है। परमेश्वर दुष्टता से और परमेश्वर का भय मानने वाले भी दुष्टता से प्रसन्न नहीं होते हैं। पहला योना की पत्री 1 उसके 5 में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है जिसमें अंधकार है ही नहीं। परमेश्वर ने कश्तियों के आक्रमण की भविष्यवाणी हबाकूप को दी थी, तो उसने लिखा 1 के 13 में, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। कुछ समय तो अधर्म फलता दिखेगा, परंतु वह दिन निश्चय ही आएगा जो झूठा अधर्म फैलाने वालों का विनाश और लज्जा लाएगा। परमेश्वर ने अति स्पष्ट कर दिया है कि न्याय का दिन आने वाला है और दुष्टता का बोलबाला न रहेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 उसके 8 में स्पष्ट व्यक्त है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। इस पद को काम में लेते हुए मैं पुराने विचारों का प्रचारक कहलाऊंगा, परंतु मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी को परमेश्वर दंड देगा। भजन संहिता 5 उसके 8 और 9 में लिखा हुआ है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। इसका अर्थ है, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण मुझे अपनी धार्मिकता में संजोए रख। वह कहता है, मेरे शत्रु मुझे निहार रहे हैं, वे चाहते हैं कि मैं ठोकर खाकर गिर जाऊं, परंतु मैं तेरा महिमान्वन करना चाहता हूं। यही कारण है कि वह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वह ठोकर खाकर गिरने से बचा ले, उसकी अगुवाई करे। वह कहता है, मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में नीरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। प्रसंगवश पौलुस भी रोमियो की कलिसिया को यही लिखता है, 3 अध्याय उसके 13 पद में, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, वे जानते ही नहीं कि सत्य क्या है, और सत्य कभी भी उनके मुख से सुनाई नहीं पड़ता है। भजन संहिता 5 उसके 10 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझ से बलवा किया है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। मेरे प्रियो, दूसरे शब्दों में उन्हें नाश कर दे, हे यहोवा, उन्हें उन्हीं की युक्तियों में गिरा दे, उनके अपराधों की अधिकता में उन्हें डाल दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है, परंतु वे सब जो तुझे खोजते हैं वे सब आनंद करेंगे, तेरी सुरक्षा के कारण वे सब आनंद के उच्च स्वर से पुकारेंगे, और वे तुझ में प्रतिष्ठित होंगे तथा तेरे नाम के प्रेमी ठहरेंगे, तू उनका पक्ष धरकर उन्हें ढाल के समान घेरे रहेगा। प्रार्थना इस भजनकार का संसाधन है, और जब वह अपने चारों ओर दुष्टता देखता है तो प्रार्थना द्वारा ही मार्गदर्शन पाता है। वह परमेश्वर के लिए लज्जा का कारण न बने इसकी वह प्रार्थना करता है, वह परमेश्वर से क्षमता की याचना करता है। मेरे मित्रों, पद 10 में भजनकार परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसके शत्रुओं का विनाश हो। भजनों में यह पहली प्रतिशोध की प्रार्थना है। हम आगे चलकर इस विषय पर अधिक विचार करेंगे। कुछ भजनों में दाऊद परमेश्वर से न्याय की याचना करता है। वह कहता है कि परमेश्वर न्याय करके दंड दे। उनमें से कुछ भजन तो वास्तव में अत्यधिक कठोर हैं। यशाया की पुस्तक 64 अध्याय उसके 1 और 2 पद में यशाया की ऐसी ही हाय की पुकार है, भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झंकार जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। एक ना एक दिन अपराधियों को दंड अवश्य मिलेगा। धर्मशास्त्र अति स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर बदला लेगा। लुकार्ची सुसमाचार 18 अध्याय उसके 3 से 8 पद में प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया था, जिसमें एक विधवा संसार के न्यायाधीश के पास अपना मुकदमा लेकर गई थी। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे इतनी सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में वह मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? दाऊद ने प्रतिशोध की प्रार्थना की थी। आज विश्वासियों के लिए ऐसी प्रार्थना करना मेरे विचार में पाप है। आप कहेंगे, आपके कहने का अर्थ यह नहीं हो सकता। निश्चय ही मैं यही कह रहा हूँ। मेरे विचार में यहाँ धर्मशास्त्र की उचित व्याख्या का प्रश्न उठता है। अनेक विश्वासी परमेश्वर के वचन में से इस अंश को हटा देना चाहते हैं। कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि यह तो परमेश्वर का वचन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह तो विश्वासियों का आचार नहीं है। किसने कहा कि यह है? यह महाक्लेश में परमेश्वर की प्रजा के लिए है। उस समय व्यवस्था पालक प्राचीन काल की नाई यह प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की मनोकामना है कि वह अपनी प्रजा की प्रार्थना सुने और उन्हें शत्रुओं को दंड दे। परंतु इस युग में हमें भिन्न व्यवहार करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 44 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ऐसा करना कठिन है, परंतु यह हमारे प्रभु यीशु का आदेश है। रोमियो के पत्री 12 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा। परमेश्वर कहता है कि वह हर एक बदला लेगा। जब हमारी नाक पर कोई घूंसा मारे तो मानवीय स्वभाव है कि हम बदले में उसे घूंसा मारें, परंतु हमें परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जब हम परिस्थिति को अपने हाथ में ले लेते हैं, तब हम विश्वास में प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि अपने शत्रुओं के समय हम उसके हाथ में छोड़ दें। प्रभु यीशु के साथ इस पृथ्वी पर पार्श्विक व्यवहार किया गया, परंतु उसने प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वह चाहता है कि उसकी कलीसिया भी ऐसी ही हो, परंतु परमेश्वर कहता है, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। एक ना एक दिन परमेश्वर बदला देने की इच्छा रखता है। यह एक अद्भुत भजन है। महाक्लेश के समय यह भजन परमेश्वर की प्रजा के लिए कैसी महान सांत्वना का कारण होगा। मेरे मित्रों, भजन 5 यहाँ समाप्त होता है और अब हम भजन 6 में आते हैं। विषय है दया की पुकार। भजनकार ने देखा कि चारों ओर दुष्टता व्याप्त है। उसने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि वह भी परमेश्वर की दृष्टि में खरा नहीं है। यदि इससे पूर्व के भजन सुबह और सांझ की प्रार्थनाएं हैं, तो यह भजन सबसे अधिक अंधेरी रात का है। यह भजन खर्च की राग में तार वाले बाजों पर बजाया जाता था। हमारे लिए यह संगीत का एक नया शब्द है, अर्थात कुछ के विचार में यह भजन केवल पुरुषों की आवाज में गाया जाना था। भजन संहिता 5 के प्रतिशोध का भजन है, जबकि भजन 6 पश्चाताप का भजन है, मन फिराव और दया की याचना का। तो आइए हम भजन संहिता 6 उसके 1-4 को पढ़ें। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट और न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। और तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। भजनकार अपनी आवश्यकता को देखता है और प्रतिक्रिया में वह पश्चाताप की पुकार करता है। आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 6 उसके 5-7 में। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। मेरे विचार में यहाँ दाऊद का चित्रण है, वरन प्रभु यीशु मसीह का चित्रण है। यह इसराइल का अंतिम दिनों का और आज विश्वासियों का भी चित्रण प्रस्तुत करता है। कैसा अद्भुत भजन है। यह दया की पुकार है जो निराश की गहराइयों से उभरती है। केवल परमेश्वर की दया से ही हमारा उद्धार है। मेरे प्रियो, नए नियम में हमें बार बार कहा गया है कि परमेश्वर दया का धनी है, उसे मुझ पर बहुत दया दिखानी है। परंतु आपके लिए भी उसके पास दया है। उसकी दया अपरंपार है और हमें निश्चय ही उसकी आवश्यकता है। यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है जो यीशु के बारे में है, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रही। भजन संहिता 69 उसके 3 में दाऊद कहता है, मैं पुकारते पुकारते थक गया हूँ, मेरा गला सूख गया है, अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंखें धुंधली पड़ गई है। भजन संहिता 42 उसके 3 में लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। भजन 38 के 10 में लिखा है, मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। अंत में भजन संहिता 88 उसके 9 में भजनकार कहता है, दुख भोगते भोगते मेरी आंखें धुंधला गई, हे यहोवा मैं लगातार तुझे पुकारता और अपने हाथ तेरी ओर फैलाता आया हूँ। इन भजनों में जो मात्र एक अंश है, प्रभु का आत्मा उन दिनों के लिए अपने ही कष्टों एवं अपमान की भविष्यवाणी करता है जो उसे उठाने होंगे। मेरे प्रियो, उसकी प्रजा इसराइल महाक्लेश के समय उसके बचे हुए लोग कष्ट भोगेंगे। उसका साहस बस इसी बात में है कि वह कष्ट उठा रहा है। ये उसके कष्टों का ब्यौरा है, विवरण है जो उसने उठाए। आज आप जो भी कष्ट उठा रहे हैं वह पहले ही भोग चुका है और वह आपको ढाड़स बंधाने योग्य है। यह कैसी अद्भुत और महत्वपूर्ण बात है कि आपके पास प्रभु यीशु मसीह उद्धारक है। भजन संहिता 6 उसके 8 में हम पढ़ते हैं, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यह प्रार्थना का उत्तर है। तब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 6 उसके 9 में, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। प्रभु यीशु के बारे में इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आज यह हमारा विश्वास है, परमेश्वर हमारे गहरे कष्टों में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। क्या यह आपके लिए साहस धरने की बात नहीं है? मेरे मित्रों, इसी पल आप कठिन परिस्थिति में होंगे तो यह भजन आपके लिए भी है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर भजन 6 समाप्त होता है और अब हम भजन संहिता 7 अध्याय में आते हैं। इसका विषय है प्रतिशोध की पुकार। किसी ने कहा कि इस भजन का शीर्षक होना चाहिए, क्या संपूर्ण पृथ्वी का न्याय उचित न करेगा। इसकी प्रस्तावना है दाऊद का शिगायोन जो उसने विन्यामिनी कूस की बातों के कारण यहोवा के सामने गाया। हम अटल तो नहीं, परंतु यह अवश्य ही कह सकते हैं कि इसका अनुमानित विचार है ऊंचे स्वर्ग में पुकारना। यह दाऊद की ऊंची पुकार का भजन है। मेरे विचार में यह ईश्वर भक्त इसराइली शेष गण का महाक्लेश के युग में सताव एवं कष्ट भोग की भविष्यवाणी है। मेरी मनोकामना है कि मैं दाऊद के मुख से इस भजन को सुन पाता। यह पाप के पुरुष के विरुद्ध पुकार है। यह विषय अगले भजन में समाहित है। इस प्रार्थना में दाऊद का विश्वास आप ध्यान से देखें। तो आइए हम भजन संहिता 7 उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे, ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह की नाय फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डालें और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। किसी ने इसका अनुवाद किया है, हे यहोवा मेरे प्रभु मैं तेरी शरण आता हूँ, पीछा करने वालों से मुझे बचा और मेरी रक्षा कर, अन्यथा वह मुझे शेर की नाई टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरा बचाने हारा कोई न हो। यहाँ पर यह शेर कौन है? यह शैतान है जिसे पत्रस गरजता हुआ सिंह कहता है। पहला पत्रस के पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसके पश्चात वह अन्यायी सताव के विषय में कहता है। आइए देखें भजन संहिता 7 उसके 3 और 4 पद में, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, वरन मैंने उसको जो आकारण मेरा बैरी था बचाया है। मैं समझ नहीं पाता कि इस संसार में अन्यायी और निर्दोष क्यों कष्ट उठाते हैं, और मैं समझना भी नहीं चाहता। परंतु मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एक मनुष्य है जो इसका भेद समझता है, और वह एक दिन हमें समझाएगा। मेरे और आपके जीवन में कुछ बातें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं। मैं आपके कष्टों की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं नहीं जानता कि मेरे कष्टों का कारण क्या था, परंतु वह एक दिन समझाएगा। अब हम एक अद्भुत बात पर आते हैं। यह भजन 6 के सदृश रात का अंधेरा नहीं है, यह सुबह का प्रकाश है। भजन संहिता 7 उसके 6 में लिखा हुआ है, हे यहोवा क्रोध करके उठ, मेरे क्रोध भरे सताने वाले के विरुद्ध तू खड़ा हो जा, मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा तो दे दी है। ध्यान दीजिए, वह परमेश्वर को पुकारता है कि उसका बदला ले और उसे दोष मुक्ति दिलाए। तब हम आगे पढ़ते हैं भजन संहिता 7 उसके 11 में, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। आज नई नैतिकता का युग है जो वास्तव में प्राचीन अनैतिकता है। परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता है। वह सांसारिक विचारों की सदृश्यता के निमित्त अपने मानक नहीं बदलता है। अतः हम दाऊद के साथ गा सकते हैं। आइए हम भजन संहिता 7 उसके 17 पद को पढ़ें। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर पाप और दुष्टता का न्याय करेगा। अंत में वह इसे जगत से मिटा देगा। यह की स्तुति करो। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। कृपया इन वचनों पर मन लगाएं, चिंतन करें और जानें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप भी बचाए जाएं। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा इतना प्यार।